यरमिया अध्याय 9। अब यरमिया घोषणा करता है, यरमिया अध्याय 9 पद 1 और 2। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वही चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों का समाज है। अब आप समझ गए होंगे कि वो रोता हुआ भविष्यद्वक्ता क्यों कहलाता है। उसकी एक ही मनोकामना है कि उसका सिर जल ही जल और उसकी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि वे उसके लोगों के संकट पर लगातार आंसू बहाता रहता। वो कहता है, भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वही चला जाता। यरमिया अध्याय 9 पद 2 और 3। क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों का समाज है। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष की नाई झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं और देश में बलवंत तो हो गए। ये बड़ा ही सजीव वर्णन है, नहीं? अपनी जीभ को धनुष के सदृश मोड़ कर रखते हैं कि झूठ का तीर चला दे। ओह, मार दिया। यरमिया अध्याय 9 पद 3 से लेकर 16 तक। परंतु सच्चाई के लिए नहीं, वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं और वे मुझको जानते ही नहीं, यहोवा की यही वाणी है। अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और हरेक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे, उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरे ज्ञान नहीं चाहते, यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख, मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूं। उनकी जीभ काल के तीर के समान भेदने वाली है, उससे छल की बातें निकलती है। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। क्या मैं ऐसी बातों का दंड ना दूं? यहोवा की ये वाणी है। क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा ना लूं? मैं पहाड़ों के लिए रो उठूंगा और शोक का गीत गाऊंगा और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊंगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि कोई उनमें से होकर नहीं चलता और उनमें ढोर का शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता। पशु पक्षी सब भाग गए हैं। मैं यरूशलेम को डी ही ढी करके गीदड़ों के स्थान बनाऊंगा और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई ना बसेगा। जो बुद्धिमान पुरुष हो वो इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वो बता दे। देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वो जंगल की नाई ऐसे जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता? और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया और ना मेरी बातें मानी और ना उसके अनुसार चले हैं, वरन वे अपने हट पर बाल नाम देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। इस कारण सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, और मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा जिन्हें ना तो वे ना उनके पुरखा जानते थे, और जब तक उनका अंत न हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ेगी। परमेश्वर अपने दंड की घोषणा करता है और उसके दंड का कारण है कि उन्होंने उसकी उस व्यवस्था का त्याग किया जो उसने उन्हें दी थी। उन्होंने उसकी वाणी नहीं सुनी, ना ही वे उसकी आज्ञाओं के अनुरूप चले, परंतु वे सब अपनी अपनी दुष्ट चाल चले, वे अपने मन की कल्पनाओं पर चले। यरमिया अध्याय 9 पद 17 से लेकर 23 तक। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो, वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाए कि हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल बहाए। सियोन से शोक का ये गीत सुन पड़ता है, हम कैसे नाश हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का ये वचन सुनो और उसकी आज्ञा मानो, तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसिनों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। तू कह, यहोवा यूं कहता है, मनुष्य की लोथें ऐसी पड़ी रहेगी जैसा खाद खेत के ऊपर और पुलिया काटने वाले के पीछे पड़ी रहती है, और उनका कोई उठाने वाला ना होगा, यहोवा यूं कहता है। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि यही वे तीन बातें हैं जिनमें लोग अत्यधिक गर्व करते हैं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, वीर अपनी वीरता पर और धनी अपने धन पर घमंड करते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है, यरमिया अध्याय 9 पद 24, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। गर्व करने के विषय है। बुद्धिमान की मृत्यु कैसी होती है? सुलेमान कहता है, सभा उपदेशक अध्याय 2 पद 17, एक मूर्ख के समान। एक धनवान व्यक्ति की मृत्यु कैसी होती है? दरिद्र के समान। बलवंत भी आयु के साथ साथ दुर्बल होते जाते हैं, देहिक क्षय के कारण। कहने का अर्थ यह है कि ये सब बातें जिन पर मनुष्य गर्व करता है अस्थाई है, वे सब क्षणिक है। मेरा बल समाप्त होता जाता है, मेरी बुद्धि का अंत होता जाता है, मेरा धन दूसरे के लिए रह जाएगा। यदि मैं गर्व करूं तो इस बात पर कि मैं परमेश्वर को जानता और समझता हूं, क्योंकि वही अनंत सत्य है और अनंत मूल्य का है। बाकी अन्य सब कुछ क्षणिक लाभ का है। धन मुझे क्षणिक लाभ पहुंचाएगा, परंतु परमेश्वर को पहचानना और समझना मेरे लिए अनंत लाभ का है। गर्व करने का एकमात्र और वास्तविक विषय यही है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर के मार्गों को समझता हूं। यरमिया अध्याय 9 पद 24, मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। देखिए परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न रहता है, आइए हम देखें। करुणा, न्याय और धर्म के काम, यही तो परमेश्वर चाहता है कि आप धर्म के काम करें। परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसा ही जीवन व्यतीत करें। एफिसियों अध्याय 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर चाहता है कि आपका व्यवहार निष्पक्ष हो और न्याय संगत हो। परमेश्वर चाहता है कि आप धर्मी हो, अर्थात वही काम करें जो उचित है। इसी से वो प्रसन्न रहता है। यरमिया अध्याय 9:25। देखो, यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहित के समान दंड दूंगा। दूसरे शब्दों में, खतना का प्रभाव अब जाता रहा और वो अर्थहीन हो गया है, इसलिए उनका दंड वैसा ही होगा जैसा खतना रहितों का होता है। यदि किसी संस्कार में सच्चाई ना हो तो वो किसी लाभ का नहीं होता है। यदि उसका अर्थ मन से संबंधित ना हो तो वो व्यर्थ है। इसी प्रकार बपतिस्मा अर्थहीन है यदि आपके मन में आत्मा का कार्य ना हो रहा है। यदि आपको मरने तक पानी के नीचे भी रख दिया जाए तो आपका उद्धार नहीं होगा। किसी भी प्रकार आगे पीछे ऊपर नीचे आपको बपतिस्मा दिया जाए, आपका उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप में पवित्र आत्मा का काम ना हो। ये संस्कार नहीं, पुराने मनुष्य की मृत्यु, पुराने स्वभाव की मृत्यु तथा पुराने मनुष्य का दफन और मसीह यीशु में नया जीवन और आत्मा में आचरण है, यही गिना जाता है, संस्कार नहीं। इसराइली लोग सोचते थे कि उनका खतना किया हुआ है, अतः वे परमेश्वर के खास जन थे। खतना करने का मुख्य उद्देश्य था कि शरीर के एक अंग का देह से विच्छेद करके ये दर्शाना कि हम शरीर के अभिलाषाओं से अलग हो गए, अब से हम आत्मा का जीवन व्यतीत करेंगे। परंतु वे खतना करके भी शारीरिक लालसाओं के दास थे, अतः उनका खतना अर्थहीन था। ये अर्थपूर्ण तभी हो सकता है जब मनुष्य शरीर से पृथक आत्मा का जीवन व्यतीत करे। प्रेरित पौलुस यही विवाद करता है कि यदि मेरा जीवन शारीरिक लालसाओं के अधीन खतना का खंडन करता है तो आत्मा का मेरा जीवन खतना की प्रथा को अनावश्यक बना देता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता है। आपका जीवन आचरण भी आपके बपतिस्मे का खंडन करता है। पानी का बपतिस्मा आपका उद्धार कर सकता है, परंतु आपका जीवन आचरण आपके किसी भी बपतिस्मे के अनुभव का खंडन कर सकता है, क्योंकि बपतिस्मा का वास्तविक अर्थ है मानव स्वभाव की मृत्यु और आत्मा का जीवन, अर्थात मसीह में एक नया मनुष्य। कलीसिया के लिए बपतिस्मा का वही महत्व है जो एक यहूदी के लिए खतना रखता था। यदि जीवन शारीरिक लालसाओं से लिप्त हो तो वो आपके बपतिस्मा में किसी भी अर्थ को व्यर्थ कर देगा। इसी प्रकार आप यदि आत्मा में आचरण कर रहे हैं तो वही आपका बपतिस्मा है। यद्यपि मेरा ये विश्वास है कि पानी का बपतिस्मा अनिवार्य है, मैं बपतिस्मा द्वारा नया जन्म स्वीकार नहीं करता। दूसरी ओर मैं ये भी स्वीकार नहीं करता कि वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा में जीवन व्यतीत करता है बिना बपतिस्मा पाए खत्म हो जाता है। अतः वे दिन आ रहे हैं जब मैं सब खतनाओं को खतना रहित के तुल्य दंड दूंगा। यरमिया अध्याय 9:26। अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अमोनियों, मुआबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों के समान जो अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियां तो खतना रहित है और इसराइल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। ये केवल दैहिक है, ये बाहरी प्रता है, ये मन से नहीं है, परमेश्वर के समक्ष मन देखा जाता है।